بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے شروتاؤں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ آج کے کاریکرم کا آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ ہود کی 45ویں، 46ویں اور 47ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا شرح پراپت کر رہے ہیں شری میر زادہ واقفی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، ہے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور نشچے ہی تیرا وعدہ سچا ہے اور تو ہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ کہا، ہے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو اششٹ کرم ہے، تو ایسی چیز کا مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی گیان نہیں ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو اجانی لوگوں میں سے نہ ہو جا۔ کہا، ہے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، इससे कि मैं तुझसे ऐसी चीज का सवाल करूं जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, और यदि तूने मुझे क्षमा न किया और मुझ पर तूने दया न की तो मैं घाटा उठाने वालों में से हो जाऊंगा।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। क्षमा कीजिएगा, आज सोमवार है, अक्टूबर की 24, रबीउल अव्वल की 27 और क्षमा कीजिएगा और आबान माह की 2 तारीख। कार्यक्रम की रूपरेखा आप नोट कर सकते हैं। कार्यक्रम में पहले विश्व समाचार पेश किए जाएंगे, विश्व समाचारों के बाद राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम होगा। उसके बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व दर्पण। हमारी आज की सभा के अंत में पेश किया जाएगा एक अन्य साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत का राज। तो दोस्तों, तो ये थी कार्यक्रम की रूपरेखा। हमारे इन कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, parstoday.com/hi। और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। परमाणु वार्ता के बारे में अमेरिका भी 2 मुखी नीति अपनाए हुए है। मैक्रां को आशा है कि यूक्रेन में अब भी शांति स्थापित हो सकती है। सीरिया से बहुत से आतंकवादी यूक्रेन का रुख कर रहे हैं। येचुरी का कहना है कि केरल के राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। नासिर करानी कहते हैं कि डराने, धमकाने, उकसाने या फिर कोई दूसरा हथकंडा अपनाकर ईरान को एकपक्षीय ढंग से विशिष्टता देने के लिए कभी भी बाध्य नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमरीकियों को भली भांति पता है कि वर्तमान परिस्थितियों पर ईरान नियंत्रण पा चुका है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के आंतरिक परिवर्तनों के आधार पर कोई योजना बनाई गई है तो उन्होंने इस बारे में बहुत बड़ी गलती की है। नासिर कनानी ने सोमवार को अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि वार्ता के मुद्दे को लेकर अमरीकी अब भी 2 मुखी नीति अपनाए हुए हैं। एक ओर तो वे अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो दूसरी ओर ईरान के आंतरिक परिवर्तनों के संदर्भ में उपद्रव का समर्थन करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान एक सशक्त देश है। उन्होंने कहा कि डराने, धमकाने, उकसाने या फिर कोई दूसरा हथकंडा अपनाकर ईरान को विशिष्टता देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ईरान ने इराक के साथ संबंधों में विस्तार पर बल दिया है। विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने इराक के पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात में तेहरान बगदाद संबंधों की बेहतरी पर बल दिया। इराक के पूर्व प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल महदी ने रविवार की शाम ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात ملاقات کی اور آپسی روچی کے وشیوں وشیشکر عراق کی تازہ استھتی اور شیتر کے مہتوپورن مدوں پر وچار ومرش کیا۔ ودیش منتری حسین امین عبداللہیان نے عراق کی سرکار اور جنتا کے پتی تہران کے سمرتھن کو دہراتے ہوئے وبھن راجنیتک آرتھک اور سرکشا شیتروں میں دونوں دیشوں کے بیچ سمبندھوں کے استر پر سنتوش ویکت کیا اور سمبندھوں کو ادھک بہتر بنانے کے پریاسوں کی سراہنا کی۔ فرانس کے راشٹرپتی کہتے ہیں کہ یوکرین میں شانتی استھاپت کرنے کے افسر ابھی بھی موجود ہیں۔ یوکرین یدھ کے آٹھویں مہینے میں پروشٹ ہو جانے کے باوجود فرانسیسی راشٹرپتی میکرا کا ماننا ہے کہ یوکرین میں شانتی کی سمبھاونا پائی جاتی ہے۔ رویٹرز کے انوسار فرانس کے راشٹرپتی نے رویوار کی شام ایک کانفرنس میں کہا کہ میں آشا کرتا ہوں کہ یوکرین میں شانتی کی سمبھاونا موجود ہے۔ وشو میں شانتی کی استھاپنا شیرشک کے انترگت آیوجت سمیلن میں بولتے ہوئے میکرا کا کہنا تھا کہ ورتمان پریورتنوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی یوکرین کی جنتا اور وہاں کے نیتا فیصلہ کر لیں تو سامنے والے پکش کے ساتھ شانتی سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ فرانس کے راشٹرپتی نے یہ بیان ایسی حالت میں دیا ہے کہ جب رویوار کو یوکرین نے گھوشنا کی تھی کہ روس نے یوکرین کے نینترن والے شیتر پر میسائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ اسی بیچ ماسکو کا کہنا ہے کہ جھڑپیں اب انینترت ہوتی جا رہی ہیں۔ سیریا سے آتنکوادی اب یوکرین کا رخ کر رہے ہیں۔ ترکی سے نزدیک مانے جانے والے آتنکوادی سیریا سے روس کے ورودھ لڑنے کے لیے یوکرین جا رہے ہیں۔ سیریا کے سنچار مادھیموں کے انوسار اس دیش کے ادلب پرانت میں سکری ہوئے آتنکوادی جن کی ترکی سے نکٹتا بتائی جاتی ہے وہ روس کے ورودھ لڑائی کے لیے یوکرین پہنچ رہے ہیں۔ ان آتنکی گٹوں کو ترکی اور امریکہ کا سمرتھن حاصل ہے۔ الوطن سماچار پتر نے ترکی کے سوتروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ القاعدہ سے سمبندھ رکھنے والے دسیوں آتنکوادی روس کے ورودھ یدھ کرنے کے لیے یوکرین جا رہے ہیں۔ فی الحال 70 آتنکی سویچھا سے لڑنے کے لیے یوکرین جا چکے ہیں۔ نصرا فرنٹ کے پرمکھ ابو محمد الجولانی نے آتنکوادیوں کو یوکرین جانے کے لیے پریرت کرتے ہوئے کئی بڑے بڑے وعدے کیے ہیں۔ یوکرین جانے والے آتنکوادیوں میں عبدالحکیم الشیشانی بھی شامل ہے جو سربازان قفقاز نامک گٹ کا مکھیا ہے۔ الجیریا کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں کے پرامرش کی وجہ سے بن سلمان عرب سنگھ کے شکر سمیلن میں بھاگ نہیں لیں گے۔ الجیریا کے راشٹرپتی بھون نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس نے ڈاکٹروں کی صلاح کی وجہ سے عرب سنگھ کے شکر سمیلن میں بھاگ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ الخلیج آن لائن ویب سائٹ کے انوسار بیان میں کہا گیا ہے کہ بن سلمان نے ٹیلی فون وارتا میں کہا ہے کہ وہ اگلے سپتاہ الجیریا میں ہونے والے عرب راشٹر سنگھ کے شکھر سمیلن میں بھاگ نہیں لے سکتے جس کی وجہ ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے ان سے یاترا سے بچنے کی صلاح دی ہے۔ لز چینی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اب کبھی بھی امریکہ کے راشٹرپتی نہیں بن سکتے۔ ریپبلکن پارٹی کی ایک پرتنیدھی نے کہا ہے کہ اگر ٹرمپ اگلے چناؤ میں پرتیاشی بنتے ہیں تو ایک نئی روڑھی وادی پارٹی استتو میں آ سکتی ہے۔ لز چینی نے بتایا کہ ڈونالڈ ٹرمپ اگر 2024 کے راشٹرپتی پد کے چناؤ کے لیے پرتیاشی بنائے جاتے ہیں تو ریپبلکن پارٹی ٹوٹ جائے گی۔ لز چینی کے انوسار ریپبلکن پارٹی کے استھان پر ایک نئی روڑھی وادی پارٹی استتو میں آ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اب کبھی بھی امریکہ کے راشٹرپتی تو نہیں بن سکتے۔ امریکہ کے پورو اپ راشٹرپتی ڈک چینی کی بیٹی لز چینی ریپبلکن پارٹی کے انسٹیبلشمنٹ سے سمبندھ رکھتی ہیں۔ کانگریس پر ٹرمپ کے سمرتھکوں کے حملے کے بعد اس معاملے کی جانچ کر رہی سمیتی کی وہ اپ پرمکھ بھی ہیں۔ انہوں نے آگامی چناؤ میں ٹرمپ کا سمرتھن کرنے والے ریپبلکنز کے بارے میں کہا کہ وہ ڈیموکریٹ سے بھی ادھک خطرناک ہیں۔ केरल के राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती देने की बात येचुरी ने कही है। सीपीआई के नेता का कहना है कि केरल की उच्च शिक्षा परिषद में हिंदुत्व की विचारधारा फैलाने के लिए कुलपतियों से त्याग पत्र मांगा गया है। भारत के केरल राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफा देने को कहा है। भारतीय संचार माध्यमों के अनुसार केरल के राज्यपाल के फैसले पर सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने हैरानी जताई है। सीपीआई नेता ने कहा है कि ऐसा निर्देश देने का राज्यपाल के पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये मनमाना अवैध और राजनीति से प्रेरित फैसला है। येचुरी ने कहा कि वे केरल की उच्च शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित और नष्ट करके उच्च शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करना चाहते हैं ताकि शिक्षा संस्थानों में हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार व प्रसार किया जा सके। सीपीआई नेता के अनुसार केरल के राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी क्योंकि देश का संविधान राज्यपाल को ऐसा कोई आदेश जारी करने की अनुमति नहीं देता है। इसी बीच केरल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होने के नाते राज्यपाल को कुलपतियों से इस्तीफा मांगने का कोई भी अधिकार नहीं है। याद रहे कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की ओर से एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी समेत केरल के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से इस्तीफे मांगे जाने पर विवाद फैल गया है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस के पद कौन संभालेगा, इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है। उनके इस्तीफे के बाद से ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जॉनसन की वापसी की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। हालांकि उन्होंने रविवार को अपनी एक घोषणा से सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व की दौड़ में वे नहीं उतरेंगे। उनके इस ऐलान के बाद भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं। ब्रिटेन की भूतपूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के स्टैचू पर हमला किया गया है। आयरन लेडी के नाम से मशहूर ब्रिटेन की भूतपूर्व प्रधानमंत्री थैचर के स्टैचू को उनके ही जन्म स्थल वाले नगर में क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसको आपराधिक मामला मानकर पुलिस इसकी जांच कर रही है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
शनिवार 22 अक्टूबर को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूरोपीय देशों और अमेरिका की बेबसी देखने को मिली, जब इन देशों को बर्लिन की सड़कों पर समलैंगिकों, अलगाववादियों और पाखंडियों को ईरान के विरोध में उतरना पड़ा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मानवाधिकार का दावा करने वाले ये देश दूसरे देश में दंगा भड़काने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं।
शनिवार 22 अक्टूबर को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूरोपीय देशों और अमेरिका की बेबसी देखने
फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन ने इटली में अपने एक संबोधन में कहा है कि अभी शांति की स्थापना का अवसर मौजूद है और उसका समय आने वाला है। हालांकि उनका ये भी कहना था कि रूस के साथ शांति के लिए शर्तों और समय का निर्धारण यूक्रेन को करना होगा। उन्होंने उन लोगों की भी आलोचना की जो रूस के साथ शांति वार्ता को यूक्रेन के लोगों के संघर्ष के साथ विश्वासघात बता रहे हैं।
फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने इटली में अपने एक संबोधन में कहा है कि अभी शांति की स्थापना का अवसर मौजूद है।
श्रोतो, वेस्ट बैंक विशेषकर जेनिन और नाबलस में चल रहे संघर्ष और जारी झड़पों की जड़ अगर आपको देखना है तो आपको अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के अंदर दो महत्वपूर्ण घटनाओं पर ध्यान देना होगा। एक चरमपंथी आंदोलनों और धड़ों का विकास है और दूसरा शांति वार्ता और दो सरकारों की योजना को आगे बढ़ाने से जानवी शासन को दूर करना है।
वेस्ट बैंक का ये हाल।
शनिवार 22 अक्टूबर को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूरोपीय देशों और अमेरिका की बेबसी देखने को मिली, जब इन देशों को बर्लिन की सड़कों पर समलैंगिकों, अलगाववादियों और पाखंडियों को ईरान के विरोध में उतरना पड़ा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मानवाधिकार का दावा करने वाले ये देश दूसरे देश में दंगा भड़काने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। साथ ही रविश जैदी।
शनिवार 22 अक्टूबर को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूरोपीय देशों और अमेरिका की बेबसी देखने को मिली, जब इन देशों को बर्लिन की सड़कों पर समलैंगिकों, अलगाववादियों और पाखंडियों को ईरान के विरोध में उतारना पड़ा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मानवाधिकार का दावा करने वाले ये देश दूसरे देश में दंगा भड़काने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। हालिया दिनों में ईरान में महसा अमीनी नामक एक लड़की की मौत के बाद जिस तरह अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने मिलकर ईरान में दंगे भड़काने का प्रयास किया है, उससे इन देशों का मानवता विरोधी चेहरा और साफ तरीके से सामने आ गया है। वहीं इस्लामी क्रांति के दुश्मनों द्वारा की जा रही हर तरह की साजिशों को लगातार मिल रही नाकामी से बौखलाए दुश्मन अब स्वयं अपने देशों में ईरान विरोधी प्रदर्शनों का आयोजन कराने में लगे हैं। लाखों डॉलर खर्च करके और प्रचार के हर माध्यम का इस्तेमाल करके ईरान की इस्लामी क्रांति के दुश्मनों ने 22 अक्टूबर शनिवार को यूरोप और उत्तरी अमेरिका में रहने वाले भगौड़े ईरानियों के एक समूह को ईरान में अशांति के समर्थन में बर्लिन में एकत्रित किया। व्यापक स्तर पर विज्ञापनों के बावजूद जर्मन मीडिया ने 80,000 लोगों की उपस्थिति का दावा किया है। अगर हम एकत्रित भीड़ से अफगान, इराक, तुर्की और जर्मनी के नागरिकों की उपस्थिति को नजरअंदाज करते हैं तो विदेशों में रहने वाले ईरानियों का आंकड़ा रखने वाली संस्था के अनुसार 11,84,552 ईरानी यूरोप में रहते हैं। अगर पश्चिमी मीडिया के झूठे दावे को मान भी लिया जाए तब भी लगभग 12 लाख लोगों में से केवल 80,000 लोगों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया, जो विदेशों में रहने वाले ईरानियों को जुटाने में ईरान दुश्मन ताकतों की अक्षमता को दर्शाता है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक ईरान विरोधी प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए इस्लामी क्रांति के दुश्मनों ने हर तरह के हथकंडे अपनाए। जहां बसों और ट्रेनों को प्रदर्शनकारियों के लिए फ्री कर दिया गया था, वहीं अपने निजी वाहन से आने वाले लोगों को पेट्रोल तक का पैसा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद इस प्रदर्शन में ज्यादातर ऐसे लोगों की संख्या थी जो इस्लामी क्रांति के समय ईरान से भाग गए थे और आतंकवादी गुट MKO से जुड़ गए थे। वहीं प्रदर्शनकारियों के हाथों में मौजूद प्ले कार्डों और बैनरों से साफ पता चल रहा था कि वो किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं, क्योंकि उन प्ले कार्डों और बैनरों पर ईरान को बांटने वाले नारे लिखे हुए थे। यह ऐसा मुद्दा था कि स्वयं प्रदर्शन में शामिल लोगों में एक गुट ने इस पर अपनी आपत्ति जताई। बहरहाल ईरान में हालिया दिनों में होने वाले दंगों की सच्चाई पूरी तरह सामने आ गई है। अमरीका और कुछ यूरोपीय देशों द्वारा लगातार ईरान पर बनाए जा रहे दबावों और कड़े से कड़े प्रतिबंधों के बावजूद इस्लाम इस्लामी गणराज्य ईरान के विकास की ओर बढ़ते कदमों को रोकने में विफल रहने के बाद अब इस्लामी क्रांति के दुश्मन दंगे कराने और आतंकवादी गुटों को आगे करके अपने नापाक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ये जान लेना चाहिए कि जिस तरह उनकी साजिशें पहले भी नाकाम होती आई हैं, उसी तरह इस बार उन्हें फिर मायूसी ही हाथ लगेगी और उनकी पराजय की सूची में एक और शर्मनाक हार जुड़ जाएगी।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रॉन ने इटली में अपने एक संबोधन में कहा है कि अभी शांति की स्थापना का अवसर मौजूद है और उसका समय आने वाला है। हालांकि उनका ये भी कहना था कि रूस के साथ शांति के लिए शर्तों और समय का निर्धारण यूक्रेन को करना होगा। साथ ही मिसा बब्बास।
फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन ने इटली में अपने एक संबोधन में कहा है कि अभी शांति की स्थापना का अवसर मौजूद है और उसका समय आने वाला है। हालांकि उनका यह भी कहना था कि रूस के साथ शांति के लिए शर्तों और समय का निर्धारण यूक्रेन को करना होगा। उन्होंने उन लोगों की भी आलोचना की जो रूस के साथ शांति वार्ता को यूक्रेन के लोगों के संघर्ष के साथ विश्वासघात बता रहे हैं। मैक्रॉन का कहना था, यूक्रेन में जंग को जारी नहीं रखा जा सकता। ये जंग हम यूरोपियों के जीवन पर असर डाल रही है और इसके परिणाम स्वरूप भुखमरी और गरीबी फैल रही है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगुव ने रविवार को अपने अमेरिकी, फ्रांसीसी और ब्रिटिश समकक्षों से टेलीफोन पर बातचीत की और कहा कि यूक्रेन युद्ध एक अनियंत्रित लड़ाई की ओर बढ़ रहा है। यूरोप में घटने वाली हालिया घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में शांति को लेकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति की इन बातों का मतलब समझा जा सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों का इस जंग की शुरुआत में मानना था कि रूस के खिलाफ व्यापक प्रतिबंध लगाकर और यूक्रेन को बड़ी सैन्य सहायता देकर मास्को को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। लेकिन यूक्रेन युद्ध को 8 महीने हो गए हैं। इस दौरान रूस ने न सिर्फ यूक्रेन के 4 इलाकों का अपनी सीमाओं में विलय कर लिया है, बल्कि पूरे यूक्रेन में बिजली, घरों जैसे बुनियादी ढांचों पर व्यापक हमले किए हैं। आज इस जंग की तबाही और विनाश को पहले से ज्यादा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यूरोपीय नेताओं को अब युद्ध में यूक्रेन की जीत को लेकर पहले से भी ज्यादा संदेह होने लगा है, इसलिए अब वो इसे जारी रखने के पक्ष में नहीं हैं। इसके अलावा यूक्रेन को हथियार देने के कारण कुछ यूरोपीय देशों के हथियारों के भंडार खाली होने लगे हैं, जिससे खुद जरूरत के समय उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका एक ऐसा देश जो यूक्रेन में युद्ध जारी रखना चाहता है, उसके अधिकारियों का कहना है कि नवंबर में होने वाले चुनाव में अगर जीत रिपब्लिकन की होती है तो वर्तमान स्वरूप में कीव के लिए वाशिंगटन की सहायता को जारी रख पाना मुश्किल होगा।
श्रोताओं, वेस्ट बैंक, विशेषकर जेनिन और नाबलस में चल रहे संघर्ष और जारी झड़पों की जड़ अगर आपको देखना है तो आपको अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के अंदर 2 महत्वपूर्ण घटनाओं पर ध्यान देना होगा। साथ ही अख्तर अब्बास।
वेस्ट बैंक, विशेषकर जेनिन और नाबलस में चल रहे संघर्ष और जारी झड़पों की जड़ अगर देखना है तो आपको अवैध अधिकृत फिलिस्तीन के अंदर
दो महत्वपूर्ण घटनाओं पर ध्यान देना जरूरी होगा। एक चरमपंथी आंदोलनों और दलों का विकास है और दूसरा शांति वार्ता और दो सरकारों की योजना को आगे बढ़ाने से ज़ायनी शासन को दूर करना है। इन परिस्थितियों के जारी परिणाम में और वेस्ट बैंक में इस शासन की विस्तारवादी कार्रवाइयों की वजह से इन क्षेत्रों के निवासियों के लिए नई बाधाएं खड़ी हो गई हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो ज़ायनी बस्तियों के आसपास रहते हैं। इन हमलों और अतिक्रमों की वजह से वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों की प्रतिक्रियाएं सामने आई और फिलिस्तीनी युवा तथाकथित इसराइल के विरुद्ध कार्रवाई करने पर मजबूर हुए, जिसका परिणाम स्वरूप बेनेट के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान कम से कम 5 ऑपरेशन किए गए। इसके विपरीत ज़ायनी शासन ने अपने अतिक्रमों की समीक्षा करने के बजाय एक ब्रेक वाटर नामक ऑपरेशन अंजाम दिया और इस संबंध में वेस्ट बैंक के विभिन्न क्षेत्रों पर छापे मारे और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करके लोगों को जेलों में भरना शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन को शुरू हुए लगभग 1 साल का समय हो गया है, लेकिन इस शासन को कोई खास परिणाम हाथ नहीं लगा और इसके विपरीत वेस्ट बैंक, जो अब तक सांठगांठ का एक केंद्र समझा जाता था, अब वो प्रतिरोध के एक केंद्र में बदल चुका है। वेस्ट बैंक का ये हाल हो चुका है कि अधिकांश ज़ायनी विरोधी ऑपरेशन इन्हीं क्षेत्रों में हो रहे हैं। अब वेस्ट बैंक प्रतिरोधक गुटों का केंद्र बन गया है, जिनके बारे में पहले नहीं सुना गया था। इन गुटों में एक जिसकी प्रतिष्ठा फिलिस्तीनियों के कानों तक पहुंच गई है, वो है अरीनुल अस्वद, जिसने इसराइलियों की नींद हराम कर दी है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, ये था कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा और अब पेश है साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व दर्पण।
विश्व दर्पण। श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे ईरान की आत्मनिर्भरता और मजबूती की। इस्लामी गणतंत्र ईरान पिछले 4 दशकों से अधिक समय से पश्चिमी देशों के कठोर प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों ने ईरान पर सद्दाम के जरिए युद्ध थोप दिया, जो 8 साल चला। इसके बाद भी ईरान के खिलाफ पश्चिमी देश चरमपंथी संगठनों की मदद करते रहे। हालिया दिनों देखने में आया कि पश्चिम ने ईरान में शुरू होने वाले प्रोटेस्ट को अपने एजेंटों की मदद से दंगों में बदल दिया और ईरान की शासन व्यवस्था का तख्ता उलट देने की कोशिश की। पश्चिमी देशों को बड़ी उम्मीद थी कि इस बार ईरान की इस्लामी व्यवस्था को नुकसान पहुंच जाएगा, मगर उनकी हसरत पूरी ना हो सकी। इस्लामी इनकलाब के नेता आयतुल्लाह उज़्मा खामेनेई ने साफ शब्दों में कहा कि साजिश में अमरीका और ज़ायनी शासन और उनके मोहरे लिप्त हैं।
बंदे पे सराहत मिगम, ये बरनामे रिजी कार अमरीका कार रेजिम गासिब व जाली सहयूनिस्ती व दोंबाल रवायों।
ईरान के जाने माने टीकाकार और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी ने इन दंगों के बारे में बात की, साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों की परिस्थितियों से तुलना भी की।
Well, in the United States during Black Lives Matter protests and riots or January the 6th, you also saw police fighting with protesters. It depends on how you want to depict it. We see it in Europe all the time. When it's in Iran, it's suddenly very strange. But did you know that during the past 3 weeks, 24 police officers and Basij members were killed on the streets, people who are protecting the population? And did you know that online, the MEK organization that's funded by and supported by NATO, they've been teaching people how to make Molotov cocktails, how to use weapons, and they've been attacking police bases, military bases, And also we've had terrorist attacks alongside the Pakistani border in the no man land in Pakistan, and also in northern Iraq from Iraqi Kurdistan. When you have 24 people of the police and those on the streets protecting the streets killed and hundreds, if not thousands, injured, there's going to be violence. There's no doubt about that. But in the United States, if 24 people were killed, if 24 police officers, or if in Britain, that such numbers were killed, what would be the response?
मोहम्मद मरंदी ने सीएनएन के साथ अपनी बातचीत में अमेरिका के हाथों शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का जिक्र किया और बड़ी ठोस दलीलें पेश की।
ईरान always changes and shifts. That's why we have different governments. But you also have to keep in mind that less than 3 years ago, when General Soleimani was murdered by the Americans, we saw the millions of people come to the streets in Tehran and millions in other cities as well. The legitimacy of the Islamic Republic of Iran in the eyes of Iranians is clear and evident. And one final point that I'd like to make is that in August 2011, when there were riots in London because someone was shot and killed by the police, a number of people were killed. I don't recall the exact number. But big tech, Facebook, back then BlackBerry, and Twitter cooperated with the British government. In the case of Iran, big tech is used as a weapon against Iranians. So Iranian voices don't come out. Iranians lose their, if they are opposed to the Western narrative, they get sanctioned. All of the Iranian media is sanctioned. Many individuals have lost their accounts. I have lost my Facebook and Instagram accounts. So these Western big tech companies, they cooperate with Western governments, even though in the riots in London, people were killed, okay, and they arrested people and put them in jail for inciting riots. But in Iran, these same media outlets make threats, they support, they help people make Molotov cocktails, and they help mobilize the rioters.
Vish Darpan. अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोलकर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण। हर हफ्ते सोमवार को जहां एक तरफ पश्चिम ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं बुरी तरह खुद संकटों में घिरता जा रहा है। यूरोप के सामने इस समय यूक्रेन युद्ध के चलते बड़ा संकट खड़ा हो गया है। यूक्रेन में अमेरिका और यूरोप छद्म युद्ध लड़ रहे हैं और युद्ध में मिलने वाली हार से बड़े आक्रोश में हैं। हालिया दिनों रूस के कई बड़े हमलों के बाद पूरे पश्चिम में हंगामा मचा हुआ है और तरह तरह के बयान आ रहे हैं। अमेरिका के कट्टरपंथी नेता जॉन बोल्टन कहां पीछे रह सकते हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि रूस को हर हाल में हराना चाहिए, वरना रूस की आंशिक विजय का भी अन्य देशों में बड़ा गहरा असर हो जाएगा।
Well, I think the most important thing we can do is help the Ukrainians defeat the Russians, because ultimately the solution for the West as a whole is regime change in Russia. That's not going to be easy, it's not going to occur soon. But one thing is certain. If Putin's aggression is seen as succeeding in Ukraine, even in part, it will strengthen his position in Russia and it will send terrible signals to other capitals, specifically Beijing. So there's a lot on the line here, not just in terms of security in Europe, but really security around the world.
بولٹن کو ایران، روس اور چین کے الائنس کی بھی بڑی فکر ہے۔ ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح روس کے ساتھ ہی ایران میں بھی ستا کا پریورتن ہو جائے۔
آئی تھنک دس از این انڈیکیشن آف ریئلی واٹ دی نیو انتانت بٹوین رشیا، ایران اینڈ چائنا از گون ٹو لک لائک۔ آئی تھنک اٹس ون مور ریزن ٹو سپورٹ دی اپوزیشن ان ایران ٹو سی دی ریجیم اوور تھرون، بٹ آلسو ٹو میک دی پوائنٹ دیٹ اٹ ڈزنٹ میٹر ہو ایڈز دی رشینز ہیئر، وی آر گون ٹو سٹک وِد یوکرینینز، وی آر گون ٹو ڈیفیٹ دس اگریشن۔
اس بیچ ایران کے ڈرون ویمان اس سمے پشمی میڈیا میں خاص طور پر، جبکہ وشو میڈیا میں بھی کافی حد تک سرخیوں میں چھائے ہوئے ہیں۔ میڈیا اور راجنیتک گلیاروں میں یہ ہنگامہ ہے کہ ایرانی ڈرون یوکرین یدھ میں روس کا بے حد خطرناک ہتھیار ثابت ہو رہے ہیں، اور ان سے اچانک اس یدھ میں روس کو بڑی مضبوطی مل گئی ہے۔ کریمیا برج پر ہونے والے حملے کے بعد روس نے یوکرین پر جو ویاپک حملے کیے ہیں ان میں پشمی حلقوں کے دعوے کے انوسار شاہد 136 ڈرون ویمانوں نے بڑی تباہی مچائی۔ اس حملے میں روس نے کیو اور انیہ شہروں میں اسٹریٹیجک مہتو رکھنے والے پرتشٹھانوں کو نقصان پہنچایا۔ اسلامی گڑتنتر ایران نے بار بار اس آروپ کا کھنڈن کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے یوکرین یدھ میں استعمال ہونے کے لیے کوئی بھی ہتھیار روس کو نہیں بیچا ہے۔ اس بیچ روس نے بھی بیان دیا ہے کہ یوکرین جنگ میں وہ کوئی ودیشی ڈرون استعمال نہیں کر رہا ہے۔ سنیکت راشتر سنگ میں روس کے دوتاواس نے بیان جاری کرتے ہوئے ان آروپوں کو خارج کیا کہ یوکرین یدھ میں روس ایرانی ڈرون ویمانوں کا استعمال کر رہا ہے، مگر یوکرین کا دعویٰ ہے کہ ایرانی ڈرون ویمانوں نے دکشن اور پشچم میں استھت چار پرانتوں میں یوکرینی سینا کی پرگتی کو روک دیا ہے، جنہیں روس اپنا حصہ بنا چکا ہے۔ ایرانی ڈرون ویمانوں کا ہنگامہ پوری دنیا میں مچا ہے۔ یورپی سرکاروں نے اس وشے پر شکھر بیٹھک کی اور ایران پر پرتیبندھ لگانے کی چرچا کی۔ وہیں امریکہ نے سرکشا پریشد کا دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایران کا روس کو ڈرون ویمان دینا سرکشا پریشد کے پرستاؤ 22-31 کا الگھن ہے۔ جہاں تک ایرانی ڈرون کی بات ہے تو شاہد 136 ڈرون آکار میں چھوٹا ہے اور قیمت میں سستا، اسے بہت لمبی دوری تک بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ ڈرون بہت نیچی اڑان بھرتا ہے جس کی وجہ سے راڈار کی رینج سے باہر رہتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں 40 کلو گرام وسفوٹک لے جانے کی کشمتا ہے جو اپنے لکش سے ٹکرا کر اسے بری طرح نشٹ کر دیتا ہے۔ اسلامی انقلاب کے نیتا آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے ڈرون ویمانوں کے مسئلے پر ایک بیان دیا۔ انہوں نے پرتیبھاوان یواؤں سے ملاقات میں تقریر کرتے ہوئے الگ الگ میدانوں میں ایران کی حیرت انگیز پرگتی کا الیکھ کیا اور اسی سندرب میں کہا کہ جو لوگ ایک زمانے میں ایرانی ڈرون ویمان کی تصویریں دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو فوٹو شاپ سے تیار کی گئی ہیں، وہی آج کہہ رہے ہیں کہ ایرانی ڈرون بہت خطرناک ہیں۔
چند سو جزین میں گفتن کہ اینا فوٹو شاپ ہے، وقتی که عکساش منتشر میشد میگفتن این فوٹو شاپ. حالا میگن که پهپادهای ایرانی خیلی خطرناکه، چرا به فلان کس میفروشید به فلان کس میدید؟
یہ سچائی ہے کہ اسلامی گڑتنتر ایران نے کسی دیش پر حملہ نہیں کیا، مگر اس کے باوجود یہ کڑوی سچائی بھی ہے کہ ایران پر بار بار یدھ تھوپنے کی کوشش کی گئی یا اس کے اندر سے استھرتا پھیلانے کی سازشیں رچی گئیں۔ ایران کے اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر کے پرمکھ کمال خرازی نے ایک موقع پر اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران کے لیے ضروری تھا کہ رکشا کے میدان میں خود کو مضبوط کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم علاقے میں استھرتا چاہتے ہیں اور استھرتا پھیلانے کے منصوبوں کو ناکام بنانا ہماری پہلی پراتھمکتا ہے۔
وی رش ٹو دا ہیلپ آف عراقیز اینڈ سیرینز انڈر دیئر انویٹیشن بیکاز ایونچولی اور سیکورٹی واز ایٹ اسٹیک۔ یو نو اف داعش ہیڈ سکسیڈیڈ ٹو ٹیک اوور بغداد اینڈ دمسکس، دے ور ویری کلوز ٹو ایرانین بارڈر اینڈ مور دین دیٹ ٹو کیپ دا اسٹیٹس کو ان دا ریجن اینڈ اپوز دوز کنٹریز ہو ہیو ٹرائیڈ ٹو ڈی اسٹیبلائز دی ریجن۔
یہ بھی روچک ہے کہ امریکہ اور یورپی دیشوں نے 60 ارب ڈالر کے بھاری ہتھیار اور جنگی اپکرن یوکرین کو دیے ہیں، اور اس سمے وہ اس بات پر ہنگامہ مچا رہے ہیں کہ ایران نے اپنے گھٹک روس کو ڈرون ویمان دیا ہے۔ ٹیکہ کار کہتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ اتہاس میں بہت بڑا موڑ ثابت ہونے جا رہی ہے۔ اس جنگ میں بہت کچھ بے نقاب ہوگا، اس میں امریکی اور پشمی پاکھنڈ سے پردہ ہٹے گا، اس میں اسرائیل کی نشپکشتا کی پول بھی کھلے گی۔ ان دنوں کیو اور تیل ابیب کے بیچ اسرائیلی میسائل ڈھال سسٹم آئرن ڈوم یوکرین کو دینے کی بات چل رہی ہے۔ اسرائیلی یدھ منتری بینی گانٹس نے کہا کہ اسرائیل انسانی جانیں بچانے کے لیے یوکرین کو الارمنگ سسٹم دے گا جو مانوتا پریمی سہایتا ہے۔ اسرائیل اس طرح روس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر روس کا کیا جواب ہوگا، مگر روس نے اسرائیل کو گمبھیر چیتاونی دے دی ہے۔ بہرحال ایران نے ثابت کیا ہے کہ اپنی کشمتاؤں کو سکری کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا جا سکتا ہے، اور یہ مت سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وکاس کا دار و مدار پشمی دیشوں کی مہربانی اور سہیوگ پر ہے۔ اس سے اب دنیا کے بہت سے دیش واقف ہو چکے ہیں، اور وہ دیش بھی جو پشم کے قریبی گھٹک مانے جاتے ہیں۔ شوتاؤ کاریہ کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، کارکرم تھا وشو درپن، جسے پیش کیا احمد عباس نے، اور اب پرستت ہے سبھا کا انتم کارکرم صحت کا راز۔
صحت کا راز،
دوستو کارکرم صحت کا راز کے ایک انکڑے کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور سید میسم کا سلام سویکار کیجیے۔ آج ہم سوماک یا سمک کے بارے میں چرچا کرنے جا رہے ہیں۔
वनस्पतियों में से एक वनस्पति है सुमक या सुमग या सोमाक। इसका वैज्ञानिक नाम है रस कोरियारिया। ये वनस्पति सामान्यतः मेडिटेरेनियन क्षेत्रों, दक्षिणी इटली, पूर्वी एशिया और ईरान के बहुत से क्षेत्रों में पाई जाती है। ईरान में सुमाक या सुमक अधिकतर राजधानी तेहरान के निकटवर्ती क्षेत्रों कज़वीन, कुम, आजरबैजान और खुरासान में पाई जाती है। ईरान में पैदा होने वाली सुमाक गुणवत्ता की दृष्टि से विश्व में उच्च स्तर की होती है। ईरान से इस वनस्पति का निर्यात कई देशों को किया जाता है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, रूस, ओमान, इराक और फारस की खाड़ी के तटवर्ती देश आदि।
पूरी दुनिया में सुमाक की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनके नाम भी अलग अलग हैं। पूरे इतिहास में सुमाक को औषधि के रूप में ही जाना जाता है या प्रयोग किया जाता है। کہیں کہیں پر اس کو رنگ کے لیے تو کہیں پر تمباکو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ورتمان سمے میں سوماک کو ایک اوشدھی کے اترکت ملیوان مسالے کے روپ میں بھی پریوگ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ کو اس کی کچھ وشیشتائیں آج ہم بتانے جا رہے ہیں۔
دنیا میں کھانوں میں جو مسالے پریوگ کیے جاتے ہیں، ان مسالوں میں سے ایک سوماک بھی ہے۔ بہت سے ویانجنوں میں اس کو ڈالتے ہیں، جس سے اس کا سواد اچھا ہو جاتا ہے۔ سوماک کا پھل واستو میں جھاڑی میں پیدا ہوتا ہے، جو سامانیہ 3 سے 4 میٹر اونچی ہوتی ہے۔ اس کے پھول ہلکے پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، جبکہ اس کا پھل گہرا بھورا یا لال رنگ کا ہوتا ہے۔ سوماک کا پھل گچھوں میں پیدا ہوتا ہے۔ آرمبھ میں تو اس کا سواد کسیلا ہوتا ہے، لیکن جب یہ پک جاتا ہے تو سوماک کا مزہ کھٹا ہو جاتا ہے۔
جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سوماک وہ ونسپتی ہے جو وٹامن اور کھنیجوں سے سمرت ہے۔ اس میں وٹامن اے اور سی کے اترکت کیلشیم، میگنیشیم، پوٹیشیم، پروٹین، فائبر، اینٹی آکسیڈنٹ، اومیگا 3، فیٹی ایسڈ اور ٹینین جیسے پولی فینولس جیسے کھنیج پائے جاتے ہیں۔ سائٹرک ایسڈ، میلک ایسڈ اور ٹارٹرک ایسڈ جیسے کاربونک امل کی اپستھتی کے کارن سوماک کے بھیتر کھٹا پن ہوتا ہے۔
सुमाग ऐसा मसाला है जिसमें सशक्त रोगाणुरोधी प्रभाव होते हैं। इसमें टैनिन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके भीतर भूख को उत्तेजित करने की क्षमता पाई जाती है। इसलिए ये पेट के दर्द और अल्सर के इलाज में अपनी भूमिका निभाता है। सुमाग का चूरण बहुत से लोगों में मतली और उल्टी को कम करता है। ये बेचैनी और पाचन विकारों को भी दूर करता है। कब्ज को दूर करने में सुमाग के प्रयोग को बहुत प्रभावी बताया गया है। ये वनस्पति मूत्रवर्धक होने के साथ ही साथ शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। ये डायरिया को रोकने में भी सक्षम है। शायद यही वजह है कि इसको गर्मी के मौसम में एक उपयुक्त मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है।
अधिक मात्रा में विटामिन सी की मौजूदगी के कारण सुमाग के भीतर वसा को जलाने की योग्यता होती है। ये पेट को पतला करने और वजन को कम करने में लाभदायक सिद्ध होता है। यही कारण है कि सुमाग के प्रयोग से शरीर में वसा का अवशोषण हो जाता है। इसका प्रयोग पाचन क्रिया को भी सही रखता है तथा पाचन तंत्र को चुस्त दुरुस्त रखने में सहायक है। सुमाग पर किए गए अध्ययन ये बताते हैं कि इसके भीतर मधुमेह के इलाज की विशेषता मौजूद है। शोध बताते हैं कि एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कोलेस्ट्रॉल तथा रक्त शुगर को कम करने में सहायक होता है।
इस वनस्पति का एक अन्य गुण यह है कि एथेरोस्क्लेरोसिस अर्थात धमनियों के सख्त होने के जोखिम को ये कम करता है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित मैकगिल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वनस्पति दिल के लिए भी बहुत अच्छी होती है। सुमाग या सुमेक मांसपेशियों की कोशिकाओं के विस्थापन को रोकने में सक्षम है। ये प्रक्रिया एथेरोस्क्लेरोसिस अर्थात धमनियों के सख्त होने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
सुमाग में एंटीऑक्सीडेंट की विशेषता पाई जाती है। इसके विभिन्न प्रजातियों पर किए गए शोध के परिणाम बताते हैं कि सुमाग के भीतर अद्भुत प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। मानव शरीर को इसके भीतर मुक्त कणों के हानिकारक प्रभावों को प्रभावहीन बनाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है। शरीर के भीतर के ये मुक्त कण पुरानी बीमारियों में बहुत प्रभावी होते हैं।
सुमाग के भीतर भूख को बढ़ाने की क्षमता होती है। रक्त चाप और ब्लड शुगर को कम करने में ये बहुत उपयोगी है। इसके पत्तों के जोशांदा या काढ़े के गरारे से एंजाइना और कुछ गले की बीमारियों की उपचार होती है। रंगों के लिए सुमाग को प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इस बात का उल्लेख जरूरी है कि सुमाग का ताज़ा फल विषाक्तता का कारण बनता है। यही कारण है कि इसके सूखे फल का प्रयोग कम मात्रा में भोजन में किया जाता है। कहते हैं कि सुमाग की पत्तियों को अगर भेड़ बकरियां या जानवर खा लेते हैं तो उनको बदहजमी जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है जिसके कारण उनकी मौत भी हो सकती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सुमाग का प्रयोग बहुत सोच समझकर और एक निर्धारित मात्रा में ही करना चाहिए।
जैसा कि आपको आरंभ में हम बता चुके हैं कि सुमाग का स्वाद खट्टा होता है। अपने इसी स्वाद के कारण सुमाग को खानों को स्वादिष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसको गोश्त मुर्ग या मछली पर छिड़क कर भी खाया जा सकता है। ईरान में बनने वाले सीख के कबाबों के साथ सुमाग का प्रयोग अधिक किया जाता है। यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा रेस्टोरेंट या कबाब की दुकान हो जहाँ पर सुमाग मौजूद न हो। सुमाग के कारण जहाँ पर खाने के हजम होने में मदद मिलती है वहीं पर इससे खाना स्वादिष्ट हो जाता है। ईरान में सुमाग के प्रयोग से जो व्यंजन बनाए जाते हैं उनमें से एक आशे सुमाग है।
ये एक पारंपरिक व्यंजन है जिसे एक प्रकार का सूप भी कहा जा सकता है। आशे सुमाग में दालें चावल लहसुन प्याज अखरोट, हरी सब्जी, चुकंदर, नमक, मिर्च और हल्दी का प्रयोग किया जाता है। इसे पकाने के लिए पहले से सुमाक को अलग एक बर्तन में भिगो दिया जाता है। जब आशे सुमाक पककर तैयार हो जाता है तो उसमें भीगे हुए सुमाक को डालते हैं, जिससे वो बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है।
गर्मी के मौसम में जिस प्रकार से हम अपने यहाँ नींबू का शरबत बनाकर पीते हैं, उसी प्रकार से ईरान के कुछ क्षेत्रों में सुमाक का विशेष शरबत बनाया जाता है। ईरान में कुछ लोग सेब पर सुमाक छिड़क कर खाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग भी हैं जो दही में सुमाक डालकर खाते हैं। सुमाक को दम करके भी पिया जाता है, जिससे शरीर को बहुत लाभ पहुंचता है।
हमने आपको बताया था कि ईरान में कबाबों पर सुमाक को छिड़क कर खाया जाता है, जिससे खाना बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। ये मसाला मांस को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे मांस के साथ ही खाया गया खाना भी अच्छी तरह से पच जाता है। सब्जियों में भी इसको प्रयोग किया जाता है। खांसी के इलाज के लिए बहुत से लोग सुमाक और शहद को मिलाकर खाते हैं, जिससे खांसी दूर होती है। इसका तरीका यह है कि पहले थोड़े से पानी को गर्म कर लें, बाद में उस पानी में शहद मिला दें। जब अच्छी तरह से शहद मिल जाए तो उसमें थोड़ी सी सुमाक डाल दें। बाद में उन सबको आपस में खूब मिलाएं। कहते हैं कि ये मिश्रण विटामिन सी से भरपूर होता है। इसे सर्दी के इलाज में बहुत ही प्रभावी माना गया है।
दोस्तों, सुमाक की कई प्रजातियां हैं, जिनमें से एक का वैज्ञानिक नाम रश एरोमेटिका है। सुमाक की ये प्रजाति कनाडा और एटाजोनी जैसे उत्तरी अमरीकी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको वहां पर सुगंधित सुमाक के नाम से पुकारते हैं। इसके फल लाल रंग के होते हैं। इस पौधे की छाल का प्रयोग मधुमेह जैसी बीमारी में किया जाता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने कार्यक्रम सुना सेहत का राज, जिसे पेश किया सैयद मीसम और मरियम मेहर दादी ने। तो दोस्तों, इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज। Thank you.